sweet Savior. Om Namah Sitavyah. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayayanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Savasahunam. Antai Majharahiya. Jai Jara Marananta Porardha. Samsara Layatamaham. Jena Chinna Jinam Vande. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टर तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चतुर्थ पुस्तक में अभी हम उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति का भुजगार आदि उसकी बात कर रहे थे और हम आए हैं पृष्ठ संख्या 22 पर, 22। यहाँ एक जीव की अपेक्षा काल की बात चल रही है। लगातार भुजगार 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 होता रहे कंटिन्यूअस हर समय में, तो मिथ्यात्व में तो हमने देखा था 4 समय होते हैं, और मिथ्यात्व का लगातार अल्पतर होता रहे तो जघन्य से तो 1 समय और उत्कृष्ट से साधिक 163 सागर, वो भी कैसे उन्हें हमने घटित किया था। और अवस्थित वाला मिथ्यात्व का कितना होता है, तो 1 समय और लगातार हो तो अंतर्मोड। अब 16 कषाय और 9 कषायों की बात हो रही थी, तो 16 कषायों में कम से कम कितना होगा और अधिक से अधिक कितना होगा, तो 1 समय तो वहां भी होता है और उत्कृष्ट तो 19 समय। तो 19 समय कैसे घटित किया था वो हमने पढ़ा था, अभी उसी का विशेषार देखेंगे तो अपना दोबारा उसके रिवीजन भी हो जाएगी। यहाँ 22 पृष्ठ पर उसी का विशेषार देख रहे हैं, अनंतानुबंधी आदि जो 16 कषाय है उसमें 19 समय कैसे घटित होते हैं उसको यहाँ बताया। यहाँ 16 कषायों की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 19 समय बतलाया है, इसके लिए 2 पर्यायों का ग्रहण किया है, क्योंकि 1 पर्याय की अपेक्षा 19 भुजगार समय नहीं प्राप्त होते। ये पर्याय ने कौन सी समझना, दो भव, 2 पर्याय ने 2 भव, जैसे हमने एकेंद्रिय या विकलेंद्रिय में से संगी में ले गए थे, इसे 2 भवों की बात है 2 पर्याय ने, क्योंकि वो 1 पर्याय की अपेक्षा वो घटित नहीं होते। ऐसा नियम है कि 16 कषाय और 9 कषायों का परस्पर में संक्रमण होता है, कषायों का भी आपस में होता है और कषायों का 9 कषाय में भी होता है, उलट सुलट सब होता है। इसके लिए यह व्यवस्था है, जिस समय जिस प्रकृति का बंद होता है उसमें अन्य सजातीय प्रकृति का संक्रमण होता है। ये नियम है कि उस समय उसका बंद होना चाहिए, तब अन्य प्रकृति का उसमें संक्रमण होता है। चूंकि यहाँ अनंतानुबंधी क्रोध की भुजगार स्थिति के उत्कृष्ट काल को प्राप्त करना है, हमें अनंतानुबंधी के क्रोध में लगातार भुजगार 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 उत्कृष्ट कितने समय तक होगा इसको निकालना है। अतः ऐसा एकेंद्रिय विकलेंद्रिय जीव लो जिसकी वर्तमान आयु 1 आवली और 17 समय शेष रही हो, यानी तब से देखेंगे अभी हम, उसने 15 समयों में अनंतानुबंधी क्रोध को छोड़कर शेष 15 कषायों की स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ा बढ़ा कर बांधी। अनंतानुबंधी के सिवाय ये तो ध्रुवबंधी है, बंद तो हो रहा है, परंतु एक समय में कुछ बांधी, फिर दूसरे समय और ज्यादा बांधी, तीसरे कषाय की और अधिक बांधी, इस तरह से एक एक समय में बड़ा बड़ा कर बांधी। पहले समय में अनंतानुबंधी मान की स्थिति को सत्ता में स्थित स्थिति से बढ़ाकर बांधा, दूसरे समय में अनंतानुबंधी माया की स्थिति को अनंतानुबंधी मान की स्थिति से बढ़ाकर बांधा इत्यादि। उसकी जो अपनी अपनी स्थिति है उससे एक समय बढ़ाकर बांधा। समान नहीं बंधेगी, उसमें वो समय का वगैरह डिफरेंस हो सकता था, वेरिएशंस होगा। तदनंतर एक आवली काल के व्यतीत हो जाने पर उसी क्रम से इनका अनंतानुबंधी क्रोध में संक्रमण किया, तो अनंतानुबंधी क्रोध भी बढ़ता बढ़ता गया, क्योंकि एक एक समय के डिफरेंस है और आवली तक कंटिन्यूस उसने यानी 15 समय तक बांधा था, तो आवली के पश्चात 15 समय तक उसका संक्रमण हुआ। इस प्रकार भुजगार के 15 समय तो ये प्राप्त हुए। अब रहे 4 समय, सो 16वें समय में अद्धाक्षय से उसने अनंतानुबंधी क्रोध की स्थिति को बढ़ाकर बांधा। पहले तो संक्रमण की अपेक्षा 15 समय घटित हुए, अब 16 उसकी अपनी स्थिति बढ़कर बंधी। 17वें समय में संक्लेश क्षय से अनंतानुबंधी क्रोध के साथ सब कषायों की स्थिति को बढ़ाकर बांधा, यानी संक्लेश क्षय होगा तो सभी की स्थिति बदल गई। अभी यह हमको भुजगार प्राप्त करना है तो बढ़ाकर बांधा कहेंगे। इस प्रकार भुजगार के 17 समय तो एकेंद्रिय विकलेंद्रिय के विकलत्रय के प्राप्त हुए, यानी उसी भाव में ये घटित किए 17 समय। आगे के 2 समय भी अन्य भव में घटित करेंगे। अब यह जीव मरकर एक विग्रह से एक मोड़ से ही जाना चाहिए, क्योंकि हमें 2 समय, हमें कंटिन्यूस भुजगार चाहिए तो बीच में एक ही समय वाला एक विग्रह लेना है। तो एक विग्रह से संगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ, इसलिए उसने विग्रह की अवस्था में यानी वहां जहां कार्मण का योग है वहां तो असंगी के जितना उसका बंध होगा, विग्रह की अवस्था में असंगी के योग्य बढ़ाकर बांधा। वो एकेंद्रिय से आया हो या विकलेंद्रिय से आया हो, विग्रह में संगी पंचेंद्रिय जन्मा है तो विग्रह में वो असंगी जितना बंध करता है। और दूसरे समय में शरीर ग्रहण कर लेने से अभी मिश्र का योग शुरू हो गया उसका, संगी पंचेंद्रिय के योग्य स्थिति को बढ़ाकर बांधा, अंत कोड़ाकोड़ी हो गया अभी उसका। इस प्रकार भुजगार के 19 समय प्राप्त हो गए। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान आदि के और 9 नौकशायों के 19 भुजगार समय प्राप्त होते हैं, किंतु 9 नौकशायों के संबंध में इतनी विशेषता है कि 16 कषायों का अध्याक्षय से उत्तरोत्तर बढ़ाकर बंद करावे। तदनंतर 17वें समय में संक्लेश क्षय से स्थिति बढ़ाकर बंद करावे। वहां अनंतानुबंधी मान में क्या लिया थे, क्रोध में लिया था, अन्य 15 लिए थे, अब यहां 16 लेना, तो 16 समय यहां घटित करेंगे। पुनः एक आवली हो जाने पर इनका 9 नौकशायों में 17 समय के द्वारा संक्रमण करावे। यानी 19-16 का 17वें समय में बढ़कर बांधी स्थिति, और आवली के बाद वो कंटिन्यूस 17 समयों में इसके 9 नौकशाय रूप संक्रमित हो जाएंगे। तदनंतर इस जीव को संगियों में उत्पन्न कराकर पूर्वोक्त प्रकार से 2 भुजगार समय और प्राप्त करें। इस प्रकार 9 नौकशायों के 19 भुजगार समय प्राप्त होते हैं। अनंतानुबंधी के 16 में से एक को अलग निकाला था, इसलिए उर्वरित 15 देखा था, और 16वें समय में अनंतानुबंधी का ही अधिक बंद किया कराया था। यहाँ 16 के 16 कषायों पर एक एक समय से अधिक बंद कराया था अध्याक्षय से, और फिर 17वें समय में संक्लेश क्षय लिया था। अब शंका, स्त्रीवेद पुरुषवेद हास्य और रति का अवस्थित काल उत्कृष्ट रूप से अंतर्मूर्त कैसे प्राप्त होता है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि जब कोई जीव कषायों की अंतःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति को अवस्थित रूप से अंतर्मूर्त काल तक बांधकर पुनः बंधावली के व्यतीत होने पर उस स्थिति का पूर्वोक्त चार प्रकृतियों में अंतर्मूर्त काल तक संक्रमण करता है, तब उसके स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रति की अवस्थित स्थिति विभक्ति का अंतर्मूर्त काल पाया जाता है। अवस्थित की बात चल रही है। यानी उसका संक्रमण देरी से शुरू हुआ, अंतर्मूर्त तक उतना अवस्थित बंद किया, और संक्रमण भी आवली के पश्चात अंतर्मूर्त तक होता रहा, तो वहां भी अवस्थित रहा। शंका, यह अवस्थित काल कहां पर ग्रहण किया गया है, उसका समाधान संगियों में। फिर शंका, यह अवस्थित काल संगियों में ही क्यों ग्रहण किया गया है, उसका समाधान, क्योंकि वहां पर स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रति का बंधकाल बहुत पाया जाता है। फिर शंका, उपशम श्रेणी में अंतरकरण करके सर्वोपशम कर लेने पर यह अंतरकरण किसका करेंगे, कौन से मोहनीय का? चारित्र मोहनीय का, क्योंकि श्रेणी की बात है ना। दर्शन मोहनी का उपशम करके चढ़ने वाले तो सातवें में ही वो उपशम करके श्रेणी चढ़ते हैं। तो यहाँ शंका है, उपशम श्रेणी में अंतर, ये अंतरकरण समझते हैं भानुबेन? इतना नहीं समझते। देखो, श्रेणी चढ़ रहा है, चारित्र मोहनी का उदय है। कौन से चारित्र मोहनी का उदय है? संज्वलन का है, क्योंकि मुनिराज है ना, अभी श्रेणी चढ़ेंगे तो संज्वलन का उदय चल रहा है। अब जो नवे गुणस्थान में आए हैं तो एक वेद है और एक संज्वलन, उसका उदय चल रहा है। परंतु सत्ता में कितनी प्रकृतियां हैं? द्वितीय उपशम वाले की 24 होगी और क्षायिक वाले की 21 होगी। सत्ता में जितनी है उन सब में अंतर कर देता है, अंतर करता है ना। इतनी जो प्रकृतियां हैं, अभी हमने यहाँ दो ही लिखी है, पर मान लीजिए सारी 21 है या 24 है, तो उसमें अंतर हो जाता है, ये परमाणु ऊपर चले जाते हैं और जो उदय रूप है वो नीचे भी आएंगे। अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बीच में अंतर हो जाए और नीचे के जो है वो क्रम से उदय होकर खिर जाएंगे, तो यहाँ उपशांत कषाय गुणस्थान प्राप्त होगा, ग्यारहवीं वाला। इसको कहते हैं अंतरकरण। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये शंका की, शंकाकार की शंका है। उपशम श्रेणी में अंतरकरण करके सर्वोपशम कर लेने पर, यानी पूरा के पूरा उपशम होने पर, 12 कषाय और 9 कषायों का, चारित्र मुनि की बात है ना, उपशम किया है तो 21 की 12 और 9 21 है, पूरे मुनि हमने 24 गिने थे, चारित्र मुनि तो 21 ही है, क्योंकि अनंतानुबंधी का विसंयोजन हुआ है द्वितीय उपशम वाले के और क्षायिक वाले के, तो क्षय ही हो चुका है। यहाँ दर्शन मुनि को नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ इसकी और कोई अन्य अवस्था नहीं हो रही है, द्वितीय उपशम करने वाले ने पहले ही कर लिया है, अब चारित्र मुह की उपशम ना हो रही है। तो कितने की हो रही? 21 की हो रही, चारित्र मुनि में 21 की उपशम ना हो रही है। तो उनका अवस्थित काल अंतर्मूर्त प्रमाण प्राप्त होता है, ये शंकाकार की शंका है। उसने अभी अंतरकरण कर लिया ना और सर्वोपशम किया, तो अभी जितने सत्ता में है वो सारे उपशमित है, उदय तो नहीं हो रहा, तो इतना का इतना काल उनका जो वहां निषेक है उतने के उतने निषेक रहेगे ही, तो अवस्थित काल वहां पाया जाएगा अंतर्मूर्त तक, ये उसका पूछना है। ग्यारहवें गुणस्थान में अंतर्मूर्त काल तक निषेक तो उतने के उतने रहेंगे, क्योंकि उसमें से कोई उदय तो होगी नहीं उसमें से। क्योंकि वहां पर द्वितीय स्थिति में स्थित निषेक अवस्थित रहते हैं, उनका गलन नहीं होता, क्योंकि अभी तो सर्वोपशमित है ना, पूरे उपशमित है और जीव यहाँ नीचे स्थित है। अभी ये सारा उपशम हुआ है और यहाँ पर जीव है, ये अंतर्मूर्त काल तक ये 11वां गुणस्थान चलेगा, तब तक तो ऊपर के निषेक उतने ही रहेंगे, उसमें से कुछ गलेगा नहीं, क्योंकि किसी का उदय ही नहीं है चारित्र मुनि का। तो यहाँ पूछ रहे हैं, तो उसको अवस्थित मानना कि नहीं मानना, उसको का कहना है तो उसको अवस्थित मानो, क्योंकि निषेक तो उतने ही है। अतः इस अवस्थित काल का ग्रहण क्यों नहीं किया गया, उसका समाधान नहीं, क्योंकि वहां पर घटिका यंत्र के जल के समान कर्मस्कंद की स्थिति के समय प्रत्येक समय में गलते रहते हैं। क्या कहते हैं, निषेक तो उतने ही है परंतु उसकी स्थिति एक एक समय से घट रही है कि नहीं घट रही, जितनी बंदी थी उतनी तो नहीं रही। यहां निषेक प्रधान नहीं लेना, काल प्रधान लेना, उनका जो सत्ता में रहने का काल है वो तो एक एक समय गल ही रहा है, उदय नहीं हुआ तो क्या हुआ। ये पहले भी दर्शन मोहिनी के बारे में यही प्रश्न पूछा था, उपशम होने पर वहां अवस्थित मानो करके। ये घटिका यंत्र समझते हैं, ये आता ना ओवर ग्लास, इसमें ये वालू का रहती है, वो तो उतने काल में वो गिरते रहते हैं। ये अंतर्मूर्त गिनने के लिए पहले करते थे। घटिका यंत्र में भी, घटिका यंत्र में क्या आता है, बड़ा ऐसा गंगाल जैसा आता है, पहले नहाने के लिए ऐसा पीतल का बहुत बड़ा ऐसा बर्तन आता था और उसमें ये घटिका यंत्र नाम का वो तो अंदर छोड़ा जाता था, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भरते 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 वो फिर नीचे डूबता था, उसको घटिका यंत्र कहते हैं। वही टाइम नापने का कोई तरीका है ये घटिका यंत्र। अरे अरे, आपने जल की बात की, घटिका यंत्र के जल के समान कर्मस्कंद की स्थिति के समय प्रत्येक समय में गलते रहते हैं, अतः वहां पर कर्म स्थिति का अवस्थितपना मानने में विरोध आता है। शंका, यति ऋषभ आचार्य ने निषेकों की अपेक्षा अवस्थितपने को स्वीकार नहीं किया है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है कि वहां निषेकों की अपेक्षा अवस्थितपना नहीं है, यह कैसे जाना। समाधान, चूंकि यति ऋषभ आचार्य ने सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति का उत्कृष्ट अवस्थित काल अंतर्मूर्त न कहकर एक समय कहा है। यदि सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व में भी यही रूल लागू होता है, जब वे उपशमित है तब एक एक समय उसमें कम होता है, परंतु निषेक तो उतने ही रहते हैं, तो वहां तो अंतर्मूर्त नहीं कहा, अवस्थित पना एक समय कहा था। हमने देखा था ना, मिथ्यात्व में से सम्यक्त प्राप्त करने पर वो एक समय अवस्थित कैसे घटित होता है। इससे मालूम पड़ता है कि यति ऋषभ आचार्य को निषेकों की अपेक्षा अवस्थित काल इष्ट नहीं है, निषेक उतने के उतने रहना उसको अवस्थित काल नहीं कहा, उसका काल उतना ही रहना चाहिए। हमने उस पर चर्चा की थी सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के बारे में विशेषार्थ। बात यह है कि जब कोई जीव 12 कषाय और 9 कषायों का उपशम कर लेता है, तब उसके उक्त प्रकृतियों के सब निषेक अंतर्मूर्त काल तक अवस्थित रहते हैं। ये 11वें गुणस्थान में ही होता है, क्यों, देखो पहले ये अंतर करने का कार्य तो 9वें गुणस्थान में होता है। अंतर करने के बाद जो उदय रूप प्रकृति है ना, तो उसमें ऊपर के परमाणु भी आते रहते हैं और उनका उदय भी रहता है। एक एक जो कषाय उदय रूप है, क्रोध है, फिर क्रोध का उदय मिटा, फिर मान का, फिर माया का, फिर लोभ का, ये तो कंटिन्यूअस परमाणु नीचे आकर वहां तो उसकी रचना होती रहती है। यानी क्रोध का उदय मिटने पर मान के परमाणु की यहाँ रचना होती है, जो आगे चलकर हम देखेंगे सपनासार में, आगाल प्रत्यागाल जिसको कहते हैं। हाँ, अभी हम अकाल की बात करेंगे, प्रत्यकाल की नहीं करेंगे, अभी अकाल की बात करेंगे। तो ये होते होते दसवें में आया, फिर सूक्ष्म लोभ का ही ऊपर का बाकी तो उपशमित हो गया है, बादर लोभ का सूक्ष्मकरण भी कर लिया है, और फिर बाद में वो उपशम करने का कार्य चालू हो जाता है। और उपशम होते होते क्या होता है, नीचे के तो गल जाएंगे, और अभी यहाँ ग्यारहवा गुण स्थान प्राप्त हुआ, तो अभी ऊपर से कुछ नीचे नहीं आएगा, उपशम पूरा हो गया बाय दैट टाइम। और यहाँ बीच में तो अंतर है, तब जब अंतर में जीव आ गया है तब उसका ग्यारहवा गुण स्थान रहेगा। तब ये जो निषेक है जितने हैं उतने ही रहेंगे, उसमें कुछ कटौती नहीं होगी, ऊपर से अभी नीचे कोई उदय रूप नहीं हो रहा है। तो अधस्थिति गलना जिसको कहते हैं वो तो नहीं हो रहा है, परंतु हर समय एक एक समय गल निकल जा रहा है। तो ग्यारहवें गुणस्थान के जितने अंतर्मुहूर्त है उतने समय तो कम हो गए उसमें से, निषेक उतने रहने पर भी उसका काल कम हो गया है, इसलिए इसको अवस्थित नहीं कहा, ये बात बताना चाहते। क्या कहते हैं, बात यह है कि जब कोई जीव 12 कषाय और 9 कषायों का उपशम कर लेता है, तब उसके उक्त प्रकृतियों के सब निषेक अंतर्मूर्त काल तक अवस्थित रहते हैं, उतने के उतने रहते हैं, उनमें उत्कर्षण उत्कर्षण आदि कुछ भी नहीं होता। उपशम होता है कि नहीं होता है, उपशम ऑलरेडी हो चुका है अभी नया कुछ नहीं होता है वहां पर, उपशम चालू रहता है क्योंकि उपशमित हो गए हैं, परंतु उसमें ना उत्कर्षण होता है ना अपकर्षण होता है ना कुछ वहां उदीर्णा होती है, तो कुछ भी नहीं होता ग्यारहवें गुणस्थान में, उसमें कुछ नहीं होता। इस पर शंकाकार कहता है, अवस्थित विभक्ति का यह काल क्यों नहीं लिया जाता ग्यारहवें गुणस्थान में, चारित्र मोहनी उपशमित है, उतने के उतने निषेक अंतर्मुहूर्त तक रहते हैं, तो उसको अवस्थित काल क्यों नहीं कहा। इसका जो समाधान किया गया है विशेषार्थ की चौथी लाइन, उसका भाव यह है, यद्यपि उक्त प्रकृतियों के निषेक अंतर्मुहूर्त काल तक अवस्थित रहते हैं यह ठीक है, फिर भी जिस प्रकार घटिका यंत्र का जल एक एक बूंद रूप से प्रति समय घटता जाता है, उसी प्रकार उनकी स्थिति भी प्रति समय एक एक समय घटती जाती है, क्योंकि अंतरकरण करने के समय उनकी जितनी स्थिति रहती है, अंतरकरण की समाप्ति के समय वह अंतर्मुहूर्त कम हो जाती है। ये अंतर किया है, उसके समय जितनी स्थिति है, एक एक समय गल गए, निषेक नहीं गले, समय घट गए, तो उतनी स्थिति भी उसकी कम हो गई है। अतः उपशम श्रेणी में अवस्थित विभक्ति नहीं प्राप्त होती। ये उपशम श्रेणी में अवस्थित विभक्ति क्यों नहीं है, उसका यह उत्तर है। इस पर फिर शंकाकार कहता है, स्थिति भले ही घटती जाओ पर निषेक तो एक समान बने रहते हैं, अतः निषेकों की अपेक्षा यहाँ अवस्थित विभक्ति बन जाएगी। इसका वीरसेन स्वामी ने जो समाधान किया है, उसका भाव यह है कि यति ऋषभ आचार्य ने निषेकों की अपेक्षा अवस्थित विभक्ति को नहीं स्वीकार किया है। इसका प्रमाण यह है, उसके लिए क्या प्रूफ है, कि यदि उन्होंने निषेकों की अपेक्षा अवस्थितपने को स्वीकार किया होता तो वे सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति के उत्कृष्ट अवस्थित काल को एक समय प्रमाण न कहकर अंतर्मूर्त प्रमाण कहते। वहां भी है ना, दर्शन मोहिनी के उपशम में भी ऐसी अवस्था होती है, वहां भी अंतर्मूर्त तक उपशमित है, वहां उन्होंने अंतर्मूर्त अवस्थितपना नहीं कहा था, क्योंकि वो क्योंकि एक अंतर्मूर्त काल तक उनका भी उपशम भाव देखा जाता है, तो उन्होंने अवस्थित तो एक समय वाला लिया था, हमने देखा था मिथ्यात्व में, वो मिथ्यात्व के 5 निषेक थे, सम्यक्त्व के 4 थे, फिर उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया वगैरह वगैरह, तो वहां हमने बहुत चर्चा की थी उसकी। अब आगे ये 12 कषाय और 9 कषाय उनकी बात यहाँ बता दी है। यानी जहां वो भुजगार अल्पतर वगैरह की बात तो बता दी, अब यहाँ तो अवस्थित की बात चल रही थी, अब अवक्तव्य की बात करेंगे। तो अवक्तव्य किसमें किसमें होगा? अनंतानुबंधी में होगा, ये कषाय की बात चल रही ना, अनंतानुबंधी की बात करेंगे। और सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व में भी होता है, उसकी तो बात आ चुकी। अनंतानुबंधी च उपकस्य अवक्तव्यम् जहन्न उपकस्येन एक समो, ये तो एक ही समय होता है, क्योंकि नहीं था और हो गया, तो नहीं था और हो गया तो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता ना, एक ही समय घटित होगा। अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि जिस सम्यक दृष्टि जीव ने अनंतानुबंधी चतुष्क को निस्सत्व कर दिया है, यानी उसकी विसंयोजना की है, वह जब मिथ्यात्व या सासाधन सम्यक्त को प्राप्त होता है, देखो दोनों ही गुणस्थान होते हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने पर भी सासाधन को प्राप्त हो सकता है, उसकी भी उन्होंने बहुत बार चर्चा की थी। तब मिथ्यात्व या सासाधन के पहले प्रथम समय में ही अनंतानुबंधी चतुष्क का स्थिति सत्व पाया जाता है, पहले निस्सत्व कर दिया था, अब उसका सत्व दोबारा पाया जाता है। शंका, असद्रूप यानी असत रूप त का द हो जाता है, असद्रूप अनंतानुबंधी चतुष्क की मिथ्यात्व में उत्पत्ति कैसे हो जाती है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय से कार्मण वर्गणा स्कंधों के अनंतानुबंधी चतुष्क रूप से परिणमन करने में कोई विरोध नहीं आता। क्या कहना चाहते हैं? अनंतानुबंधी नहीं होने पर भी, उसका उदय नहीं होने पर भी मिथ्यात्व के उदय में अनंतानुबंधी का बंध होता है। मिथ्यात्व के उदय से ही, मिथ्यात्व के कारण अनंतानुबंधी का बंध हो रहा है। यहां सासाधन में जो अलग कारण था उसमें संक्रमण के द्वारा होता है वगैरह वगैरह, अनंतानुबंधी का जो विसंयोजन किया है, ऐसा जीव जब मिथ्यात्व में आता है, तो यहां क्या कहा था कि उसकी सत्ता कैसे हुई? उसका उदय तो नहीं होगा बंधावली व्यतीत होने तक, पर सत्ता में, हमारे तो सत्ता की बात चल रही, विभक्ति हम सत्ता को कहते हैं, तो मिथ्यात्व में आते ही सत्ता कहां से हो गई उसकी? तो मिथ्यात्व परिणाम के कारण अनंतानुबंधी का नया बंध हो रहा है, नहीं तो अन्यथा कैसा रूल है, जहां अनंतानुबंधी का उदय है वहां पर उसका बंध होगा। अन्य चारित्र मुनि में भी ऐसा है ना, अभी नौकषाय को छोड़ दो, जहां मिथ्यात्व का उदय है वहीं पर मिथ्यात्व का बंध है, ऐसी जो बातें हैं, तो यहां तो कुछ है नहीं, उसने विसंयोजन कर दिया था। देखो ये जो चलती थी ना बात, मिथ्यात्व बंध में अकिंचित करे, उसके लिए ये सबसे बड़ी दलील है। अनंतानुबंधी तो था नहीं, तो उसका बंध हुआ कैसे? तो मिथ्यात्व के कारण हुआ है, नहीं मालूम, अकिंचित कहने कुछ करता नहीं, मिथ्यात्व के कारण बंध नहीं होता, ऐसा कहने वाले कोई थे ना? हाँ, किंचित करे ने कोई कार्य कार्य कुछ नहीं करता मिथ्यात्व, वो तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है ना। मिथ्यात्व में और सासाधन में, वो दोनों अभी यहाँ बताएंगे। देखो फिर शंका पूछ रहे हैं, सासाधन में उनकी सत्ता रूप से उत्पत्ति कैसे हो जाती है? मिथ्यात्व में तो ठीक है, मिथ्यात्व के उदय से होती है, सासाधन में तो मिथ्यात्व का उदय भी नहीं है, तो संसाधन में क्या कारण है? उत्पत्ति होने का कारण कुछ तो होना चाहिए। तो कहते हैं संसाधन रूप परिणामों से। तो संसाधन रूप परिणाम किसे कहते हैं? उसका समाधान, तत्वार्थों में अश्रद्धान लक्षण सम्यक्त्व के अभाव को, यानी सम्यक्त्व का अभाव है उसका लक्षण क्या है? तत्वार्थों में अश्रद्धान। ऐसे सम्यक्त्व का अभाव हो जाने पर संसाधन रूप परिणाम कहते उसको। एक ख्याल में आई, अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं थी तो मिथ्यात्व में फिर से सत्ता हुई, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण नया बंध हुआ। संसाधन में कैसे आ गई सत्ता? तो संसाधन रूप परिणामों के कारण। वह संसाधन रूप परिणाम किस कारण से उत्पन्न होता है, ये प्रश्न चिन्ह चाहिए। तो कहते अनंतानुबंधी चतुष्कों के उदय से, पर उदय होने के लिए वहां था नहीं ना, ख्याल है ना? तो अनंतानुबंधी चतुष्क से उदय, तो अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय किस कारण से होता है? परिणाम विशेष के कारण अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय होता है। परिणाम विशेष का अर्थ ऐसा है जैसे विषयोजना में अन्य कषाय रूप हुआ था, तो यहाँ परिणाम के कारण, वो तो अप्रत्याखानादि का अनंतानुबंधी रूप से संक्रमित होता है उसी समय में, उसके लिए संक्रमणावली वगैरह और गुल यहाँ पर नहीं लागू होता। यानी संक्रमणावली बीत जाएगी फिर उदय होगा, ऐसा यहाँ नहीं है, उसी समय उसका उदय भी होगा। एकमात्र संसाधन में ये ऑप्शन है। बंध, नया बंध तो होगा वो बाद में उदय में आएगा, ये संक्रमण के द्वारा जो अभी संक्रमित हुआ है वो उदय में आएगा, उसके लिए संक्रमणावली का वहां रूल नहीं है। नहीं तो नया बंध होता तो मिथ्यात्व में भी इमीडिएट उदय होना चाहिए था, वो तो बंधावली के बाद ही उदय होता है। आवली काल तक मिथ्यात्व का ही उदय और उसी से के बंध चल रहा है, परंतु यहाँ क्या है, बंध की बात। बंध तो होगा परंतु उदय किसका होगा? बंधते ही उदय तो नहीं हो सकता। तो जो ऑलरेडी विसंयोजन के द्वारा अन्य रूप किया था, परिणाम के कारण उसका फिर संयोजना हो जाएंगे, संयुक्त तो हो जाता है, संक्रमित होकर इमीडिएट उदय भी हो सकता, उसी समय संक्रमण भी होगा और उसी समय उदय भी हो जाएगा। हाँ, वही उदय से ही आया, परंतु उदय से उदय क्यों हुआ? उदय के लिए कुछ सत्ता में था ही नहीं, तो परिणाम विशेष के कारण। तो परिणाम क्यों हुआ? उदय हुआ। उदय क्यों हुआ? तो फिर कहते परिणाम विशेष के कारण, परंतु उसके कारण जो फिर से संयुक्त तो हुआ है जीव, उल्टा संक्रमण जिसको हम कहते ना। अब आगे का सूत्र देखेंगे। सम्मत्त सम्मा मिच्छत्ताणम भुजगार अवट्ठिद अवत्तव कम्मंसियो केवचिरम कालादो होदी। यहाँ काल की बात चल रही ना, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीव का कितना काल है? तीनों को इकट्ठा लिया उसका अर्थ ही है कि एक समय बताएंगे अभी। यह सूत्र सुगम है। जघन्य उक्कसेन एक समो, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, उसका खुलासा इस प्रकार है। जिसने पहले सम्यक्त्व सत्कर्म को उत्पन्न कर लिया है, ऐसा कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव, सम्यक तो सत्कर्म है, वो 28 की सत्ता वाला है। जब सम्यक तो सत्कर्म के ऊपर दो समय अधिक इत्यादि रूप से मिथ्यात्व की स्थिति को बांधकर सम्यक्त्व को ग्रहण करता है, तब उसके सम्यक्त्व के ग्रहण करने के प्रथम समय में सम्यक्त्व की भुजगार स्थिति विभक्ति होती है। क्या कहना चाहते हैं? जब उसने सम्यक तो प्राप्त किया, तब उसकी मिथ्यात्व की स्थिति कितनी थी? दो समय ज्यादा या दो समय से अधिक कितना भी ले लो, मिनिमम तो दो समय अधिक होनी चाहिए। जब उसने सम्यक तो प्राप्त किया तो सम्यक प्रकृति का तो उदय रहेगा, और जितना मिथ्यात्व है वो संक्रमित हो जाएगा। तो वहां उसका एक समय वाला लेंगे तो अवस्थित हो जाएगा। हाँ, एक समय तो निकल गया और एक संक्रमित हुआ, तो उसकी भुजगार हो गई थी, उससे बढ़ गया। तो दो समय तो मिनिमम आवश्यक है, उससे अधिक कितना भी रह सकेगा। देखो, पहले वो मिथ्या दृष्टि था, कौन सा वाला है? वो 28 की सत्ता वाला है। तो 28 की सत्ता वाला है तो उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व है पड़े हुए, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, एक समय नीचे है मिथ्यात्व और ऊपर कितना भी हो सकता है ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कितना भी हो सकता है। तो कितना अधिक होना चाहिए? तो दो समय तो अधिक होना ही चाहिए, उससे ऊपर और भी ले लो तो चलेगा। तो जब सम्यक तो प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, ये तो अधस्थिति कल्पना के द्वारा निकल गया, और अब ये मिथ्यात्व ये सम्यक्त्व का उदय हो जाएगा। सम्यक्त्व का उदय हो, ये तो गए ना, एक समय यहाँ का गया, और अभी ये जो है ये इसमें ट्रांसफर हो गया, यानी एक समय अधिक बढ़कर हो गया, क्योंकि इसका एक समय कम हुआ है। अब ये जो दो समय अधिक थे उसमें तो एक समय तो निकल गया है, और जितना है वो अभी संक्रमित होगा, तो उसका जितना है उसमें एक समय और बढ़ जाएगा, उसकी स्थिति एक समय से बढ़ जाएगी। अभी ज्यादा होगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, ख्याल में आती ना? और ज्यादा कितनी, हमने यहां तक देखा था ना, तो वेदक सम्यक तो प्राप्त करता है, तो यहाँ 70 कोड़ा कोड़ी बांधी थी और अंतर्मूर्त चला गया था और उसने प्राप्त किया, तो उसकी उतनी हो गई, कितनी भी हो जाए उसको भुजगार कहेंगे हम, बढ़ गई इतना ही देखना है। ये वृद्धि कितनी हुई वो आगे के प्रकरण में आएगा, कम से कम एक समय हुई, अधिक से अधिक वो इतनी हो गई, अभी तो भुजगार हुई इतना ही देखना है। तथा अब ये दो समय अधिक लिए थे, यदि इसको एक समय अधिक ही लेते तो क्या होता, उतनी हो जाती, तो अवस्थित कहते हैं उसको। पहले जो दो समय अधिक इतना ही नहीं कहा, दो समय अधिक इत्यादि लिखा था, इत्यादि में दो समय अधिक से लेकर जितना हो सकेगा उतना अधिक। तथा एक समय अधिक मिथ्यात्व की स्थिति को बांधकर जिसने सम्यक्त्व को ग्रहण किया है, उसके सम्यक्त्व के ग्रहण करने के प्रथम समय में सम्यक्त्व की अवस्थित विभक्ति का काल एक समय प्राप्त होता है, यानी एक समय के लिए अवस्थित रहा, पहले जितना था उतना ही रहा, क्योंकि दूसरे समय में अल्पतर विभक्ति उत्पन्न हो जाती है। अल्पतर क्यों होती है? क्योंकि जब तक सम्यक तो बना रहेगा तो उसकी स्थिति एक एक समय से घटती चली जाएगी, मिथ्यात्व की भी और सम्यक तो की भी और सम्यक मिथ्यात्व की भी। शंका, उपशम सम्यक तो के काल में तीन दर्शन मुनि की स्थिति के निषेक द्वितीय स्थिति में अवस्थित रहते हैं, अतः उनका गलन नहीं होने के कारण अवस्थित काल अंतर्मूर्त प्रमाण प्राप्त होता है, उसे यहाँ क्यों नहीं ग्रहण किया? अभी जो चारित्र मुनि के बारे में पूछा था वही प्रश्न यहाँ पर है। समाधान, नहीं, क्योंकि वहां पर तीनों कर्मों की कर्म स्थिति के समयों के कर्म स्थिति कम हो रही है, प्रत्येक समय में गलते रहने पर स्थिति का अवस्थान मानने में विरोध आता है, निषेक उतने रहने पर भी कर्म की स्थिति घटती चली जाती है, उतने समय चले गए। यदि कहा जाए कि निषेकों को स्थितिपना प्राप्त हो जाएगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि द्रव्य को पर्याय रूप मानने में विरोध आता है, अर्थात निषेक द्रव्य है और उनका एक समय तक कर्म रूप रहना आदि पर्याय है। चूंकि द्रव्य से पर्याय कथनचित भिन्न है, अतः पर्याय के विचार में द्रव्य को स्थान नहीं है। सर्वथा भिन्न की बात नहीं है, फिर भी कथनचित भिन्न तो है ही। ऐसा नहीं है, निषेक को यहाँ द्रव्य कहा और उसके एक समय दो समय वो पर्याय, उसकी काल उसको पर्याय का, कितने काल का है वो देखो। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बांधी स्थिति, तो जो अंतिम निषेक है उसकी स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी, क्योंकि निषेक तो वहां कम है। अभी मान लेते 10 साल बीत गए बांध कर, तो कितने कहेंगे उसकी स्थिति? 10 साल कम हुए ना उसमें से, निषेक भले उतने ही रहे क्योंकि 7000 वर्षों के बाद उसमें से उदय होने वाला है, निषेक तो घटे नहीं है कुछ। फिर भी क्या कहेंगे हम? स्थिति घट गई उसकी अभी, क्योंकि बांध कर इतने काल बीत गया है। वैसे यहाँ उपशमित होने पर इतने निषेक तो पड़े हैं, परंतु उसकी स्थिति हर समय कम हो रही है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। जिसके सम्यक तो कर्म की सत्ता नहीं है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक्त्व को ग्रहण करता है, वो कौन सा सम्यक्त्व होगा उसको? हाँ भानुबेन, प्रथम उपशम कहेंगे उसको। तब उसके सम्यक्त्व के ग्रहण करने के प्रथम समय में एक समय तक अवक्तव्य स्थिति विभक्ति होती है। अवक्तव्य का अर्थ सत्ता नहीं थी और हो गई, पहले निस्सत्व था ना वो, अब वो सत्ता हो गई प्रथम उपशम सम्यक्त्व के काल में। अंत कोड़ा कोड़ी हो जाए, कितनी होती उससे मतलब नहीं है, नहीं थी और हो गई तो अवक्तव्य कहेंगे, क्योंकि पहले अविद्यमान सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के स्थिति सत्व की इनके उत्पत्ति देखी जाती है। इस अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का काल एक समय ही है, क्योंकि दूसरे समय में अल्पतर स्थिति विभक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये बात ख्याल में आई? अब आगे, अपदर कम्मंसियो केवचिरम कालादो हो दी, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर स्थिति विभक्ति सत्कर्म वाले जीव का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। जहन्येन अंतोमोत्तम, अब यहां एक समय नहीं कहा, अल्पतर ने घटना, जब तक सम्यक तो बना रहेगा तो घट ही रहा है, तो कम से कम अंतर्मूर्त तो होगा ही, ख्याल है ना? अंतर्मूर्त तो सम्यक तो बना रहा, और फिर मिथ्यात्व आने पर भी वहां पर, वहां अल्पतर होगा, परंतु वो तो उत्कृष्ट में चला जाएगा, उत्कृष्ट में चला जाएगा। उत्कृष्ट काल तो हम लंबा काल वेदक का भी ले सकते हैं, या मिथ्यात्व में जाने पर उद्वेलना भी ले सकते हैं, पर किसकी? अल्पतर होना चाहिए, सपना में भी होगा, परंतु मिनिमम जो अंतर्मूर्त का काल है उसको भी ले सकते हैं हम। वेदक सम्यक तो भी अंतर्मूर्त रहे तो भी वो घटित होगा, उपशम सम्यक तो भी अंतर्मूर्त रहे तो भी घटित होगा। हाँ अच्छा, इसके लिए आपको ये कहना था कि क्षय ही हो गया उसका, क्षय करेगा वो, क्योंकि मिथ्यात्व में जाने पर भी उसका अल्पतर होता रहेगा। बरोबर है, देखो सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर स्थिति विभक्ति सत्कर्म वाले जीव का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। जहन्येन अंतोमोत्तम, जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जिसके सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का सत्व नहीं है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जब प्रथमोपशम सम्यक्त को ग्रहण करता है, तब उसके सम्यक्त्व के ग्रहण करने के प्रथम समय में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति होती है। जघन्य घटित करना है ना,
तो पहले अवक्तव्य थी और अभी अल्पतरशीर हो जाएगी।
तथा दूसरे समय से अल्पतर स्थिति विभक्ति को प्रारंभ करके अति लघु अंतर्मूर्त काल के द्वारा वो यदि दर्शन मुनि का क्षय, हाँ ये क्षय की बात आ गई ना, अति लघु अंतर्मूर्त यानी उपशम समेत में से वेदक हो गया और फिर उसमें से क्षय किया उसने, तो उसके अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। उपकसेन बे छावट्टी सागरवमाणी सादिरे, यानी वो वेरे लिखा है बे चाहिए ना प्राकृत में। उत्कृष्ट काल साधिक 266 सागर है, उसका खुलासा इस प्रकार है, जिसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व कर्म का कर्म का सत्व नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक्त्व के ग्रहण करने पर एक समय कम उपशम सम्यक्त्व का काल अल्पतर काल होता है। पुनः वेदक सम्यक्त्व को ग्रहण करके और उस सम्यक्त्व के साथ प्रथम 66 सागर काल बिताकर तदनंतर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होकर और वहां अंतर्मूर्त काल तक रहकर पुनः वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त करके, वहां भी तीसरे गुणस्थान में भी अल्पतर ही हो रहा है और फिर दोबारा वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया और उसके साथ द्वितीय 66 सागर काल बिताकर पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त करके, अब उसका क्षय नहीं कराया, मिथ्यात्व को प्राप्त करा के जब वह पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण सर्वोत्कृष्ट उद्वेलना काल के द्वारा, वहां भी उद्वेलना काल में जघन्य उत्कृष्ट हो गए, उसमें उत्कृष्ट लिया, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर देता है, तब उसके सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का पल्लोपम के असंख्यातवे भाग से अधिक 266 सागर प्रमाण अल्पतर काल होता है। पहला अंतर्मूर्त उपशम सम्यक्त्व का काल, उसमें से एक समय कम करो, क्योंकि पहले में पहले वो अवक्तव्य था, बाद में अल्पतर होता गया, उसके बाद वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया, वहाँ 66 सागर हुआ, फिर एक अंतर्मूर्त के लिए तीसरे गुणस्थान में आया, वो 66 सागर में ही मिला देना, ये पूरे 66 सागर होते तो क्षायिक हो जाता है। हाँ, तो फिर 66 सागर वाला ऊपर गया और मिथ्या तो में लाना है, तो वो भी अंतर्मूर्त का, मगर ये उपशम समय तो का अंतर्मूर्त हमने गिना ही था उसमें, अब मिथ्या तो में आने के बाद उद्वेलना की उसने, तो पल्ले का असंख्यातवा भाग प्लस 266 सागर। इस प्रकार यति ऋषभ आचार्य के सूत्र के आश्रय से ओघ का कथन करके अब उच्चारणा के आश्रय से भुजगार काल का कथन करते हैं। लगातार भुजगार होना उसको भुजगार काल कहते हैं। हमने देखा था ना मिथ्यात्व में 4 समय, अनंतानुबंधी में 19 समय। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति भक्ति का कितना काल है, जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल 4 समय, ये मिथ्यात्व की भुजगार का। अल्पतर स्थिति विभक्ति का कितना काल है, जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल साधिक 163 सागर। ये हमने देखा था ना साधिक में वो 3 पल्ले वाली भी आयु ली थी, हाँ ये समय तो को प्राप्त किया था वगैरह वगैरह, यानी वो 2 बार 66 सागर और एक 31 सागर वाला भोग किया था उसने। अवस्थित स्थिति विभक्ति का कितना काल है, जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल 19 समय है। अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का भंग मिथ्यात्व के समान है। अनंतानुबंधी चतुष्क की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति विभक्तियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक 132 सागर है। इसी प्रकार त्रस त्रस पर्याप्त और चक्षुदर्शन वाले और भव्य जीवों के जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि त्रस और त्रस पर्याप्त को में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। पहले ओग में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का जो जघन्य काल अंतर्मूर्त बताया था, त्रस में आया है और उद्वेल ने कंप्लीट किए विशेषार्थ। यद्यपि योग से सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त से कम प्राप्त नहीं होता, तो भी त्रस और त्रस पर्याप्त जीवों के वह एक समय बन जाता है, क्योंकि जिसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना में एक समय शेष रह गया है, उसके त्रस और त्रस पर्याप्तकों में उत्पन्न होने पर वहाँ सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल एक समय देखा जाता है, क्योंकि मार्गणा अभी अभी शुरू हुई और उसमें आते ही था, उसकी सत्ता थी और नष्ट हो गई। हाँ, अब आदेश की अपेक्षा मार्गणाओं में अभी बताएंगे। नारकियों में मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति का कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। उत्कृष्ट काल तीन समय इस प्रकार है, ये तो आपको ख्याल आया होगा कितने, हाँ, क्योंकि असंगी में से आया हुआ है, विग्रह में तो पहले जैसा असंगी जैसा बन गया। तो जो असंगी पंचेंद्रिय जीव दो मोड़े लेकर नारकियों में उत्पन्न हुआ है, उसके दूसरे समय में अध्याक्षय से एक भुजगार समय होता है, तीसरे समय में स्थिति के उसी परिणाम से ही संगी की स्थिति को बांधते हुए, परिणाम तो नहीं बदला परंतु भी संगी, क्योंकि मिश्र अवस्था शुरू हो गई तो संगी के योग्य बंध हो रहा, स्थिति को बांधते हुए उसके दूसरा भुजगार समय होता है। शंका, संकलेश क्षय के बिना तीसरे समय में वह जीव संगी की स्थिति को कैसे बांधता है? उसका समाधान, क्योंकि संकलेश के बिना संगी पंचेंद्रिय जाति के निमित्त से उसके स्थिति बंध में वृद्धि पाई जाती है। देखो देखो, तीन समय है ना, दो मोड़े लेकर नारकियों में उत्पन्न हुआ है असंग। हाँ, पहले समय में उस भुजगार की बात चल रही है, पहले समय में ऐसे उसका ज्यादा हुआ, दो मोड़े लेकर नारकियों में उत्पन्न हुआ है। हाँ, पहले समय में असंगी, दूसरे समय में असंगी जैसा ही मगर अध्याक्षय हो गया, असंगी जैसा ही असंगी योग्य ही बढ़कर बंद हुआ। विग्रह के दो समय हैं, पहले समय में भी असंगी जैसा और दूसरे समय में भी असंगी जैसा, परंतु बढ़कर, क्योंकि अध्याक्षय हो गया, स्थिति बंध का वो काल पूरा हुआ इसलिए बढ़कर बंद किया,
तीसरे समय में मिश्र अवस्था वैकृत मिश्र शुरू हो गई तो वहाँ संगी जैसा बंध शुरू हुआ, तो ये तीसरा समय लिया। इसीलिए वहाँ पूछा था कि संकलित क्षय तो हुआ नहीं था और तीसरे समय में भुजगार क्यों हुआ, तो कि अभी संगी जैसा बंध शुरू हुआ। तथा चौथे समय में संकलित क्षय से उसका तीसरा भुजगार समय होता है। देखो नारकियों में आने पर कंपेयर करना है, इसलिए पहले समय वाला जितना था उसी की अपेक्षा कंपेयर करेंगे तो भुजगार पहले समय में कह नहीं सकते। नारकियों में आने पर उसको भुजगार कहना पड़ेगा ना, तो पहले समय की कंपेयर दूसरे समय में बढ़ गया तो हमने भुजगार का एक कहा, नारकी में आने का दूसरा समय। तो पहले समय में जितना था दूसरे समय में ज्यादा हुआ तो भुजगार एक हुआ, नारकी में आने पर तीसरे समय में दूसरा भुजगार हुआ, मिश्रक शुरू हुआ और फिर संकलित क्षय हुआ उसका, फिर नारकी में तीसरा समय भुजगार का हुआ। यानी नारकी में जन्म लेने पर चार समयों में पहले की अपेक्षा दूसरा भुजगार, तीसरा भुजगार, चौथा भुजगार, तीन भुजगार हुए। इस प्रकार नारकियों के मिथ्यात्व की भुजगार सिद्धि के तीन समयों का कथन किया, अथवा अद्धाक्षय और संकलित क्षय से स्थिति बढ़ाकर बांधने वाले नारकी के दो भुजगार समय होते हैं। क्यों, वो असंगी की बात छोड़ दो, अन्यथा अदरवाइज नारकी में दो भुजगार तो हो सकते, एक तो हुआ अद्धाक्षय हुआ और एक हुआ संकलित क्षय, तो किसी भी पॉइंट पर हो सकता है ये बात। यह पाठ यहाँ पर प्रधान रूप से लेना चाहिए क्योंकि उसी की मुख्यता है ना, सभी नारकियों में घटित होगा ये। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय, मिथ्यात्व की अल्पतर का और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर हैं। कैसे, हाँ 33 सागर वाली आयु वाला वहां जाने पर सम्यक तो प्राप्त किया है और फिर लगातार घटते चला जाएगा, अंत में मिथ्यात्व में आने पर भी जघन्य बंद हुआ, फिर उतना का उतना बंद हुआ, वो सब काल मिलकर कुछ कम 33 सागर। अवस्थित स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है। ओघ में कितना देखा था याद है, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, उतना का उतना बंद होता रहेगा। तो 12 कषाय और 9 कषायों की भुजगार भजगार हुआ, भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 17 समय है। वहां तो हमने दो भवों की अपेक्षा से घटित किया था, यहाँ नारकी का तो एक ही भव ले सकते हैं, इसलिए 17 समय ले लिए। यानी अन्य जो 15 कषाय है उसका बढ़ते हुए बांधा है तो वो आवली के बाद वो संक्रमित होगा और फिर वहां इसका अध्यक्षय हुआ और इसका संकलित क्षय हुआ। शंका, यहां पर 18 समय प्रमाण भुजगार क्यों नहीं प्राप्त होता? नहीं, क्योंकि 18वां भुजगार समय विचार करने पर बनता नहीं, अतः यहां उसे स्वीकार नहीं किया गया। 12 कषाय और 9 कषायों की अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का भंग मिथ्यात्व के समान है। यानी अल्पतर का वो 33 सागर में कुछ कम और अवस्थित में एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक। अनंतानुबंधी चतुष्क का कथन इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है, यानी उनके जो भुजगार अल्पतर और अवस्थित के बारे में तो वही बात है, इसमें एक्स्ट्रा एक कौन सा है, अवक्तव्य। अवक्तव्य स्थिति विभक्ति ओग के समान है, यानी एक समय के लिए। सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है। अल्पतर एक समय कैसे होगा? हाँ, वक्तव्य कैसा होगा? सत्ता नाश हो जाएगी, उसको अवक्तव्य नहीं कहते। बिना सत्ता वाला सत्ता प्राप्त करेंगे तो अवक्तव्य कहते हैं। हाँ, यहाँ नारकी में आया और वो नष्ट हो गया उसका विशेषार्थ। सामान्य नारकियों में मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 3 या 2 समय घटित करके बतलाया है। साथ ही यह सूचना भी की है, यहाँ 2 समय वाला पाठ प्रधान है। मालूम होता है कि यह सूचना बहुलता की अपेक्षा की है, मेजॉरिटी की अपेक्षा वो बात होती है। एक तो असंगी जीव नरक में कम उत्पन्न होते हैं, उसमें भी पहले नरक में ही उत्पन्न होते हैं, फिर भी सर्वत्र भुजगार स्थिति के 3 समय प्राप्त होना शक्य नहीं है। यानी नॉट नेसेसरी वो असंगी से आया है फिर भी अर्धाक्षयी हो जाएगा, उस समय संकलिक्षयी हो गए, ये तो बात तो बनना मुश्किल है। हाँ, 2 समय 7 नरकों में प्राप्त होते हैं, यही कारण है कि वीरसेन स्वामी ने 2 समय वाली मान्यता को मुख्यता दी, तथा नरक में वेदक समयत्व का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है, इस अपेक्षा से वहां मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल जानना चाहिए, तथा किसी भी विवक्षित कषाय और नो कषाय की भुजगार स्थिति के नरक में 17 समय ही बनते हैं, क्योंकि संक्रमण की अपेक्षा 15, अर्धाक्षय की अपेक्षा 1 और संकलिक्षय की अपेक्षा 1, इस प्रकार एक भव की अपेक्षा भुजगार के कुल 17 समय ही प्राप्त होते हैं। सामान्य से सामान्य जो बताया था, तो 2 पर्याय के लिए 2 भव लिए थे, जो भुजगार के 19 समय बतलाए हैं वे 2 पर्यायों की अपेक्षा घटित किए गए हैं, पर यहाँ केवल 1 नरक पर्याय ही विवक्षित है, अतः 17 समय से अधिक नहीं बनते। यही कारण है कि वीरसेन स्वामी ने नरक में भुजगार के 18वें समय का भी निषेध कर दिया है, किंतु 9 कषायों के 17 समय घटित करने में जो विशेषता ओघ प्ररूपणा में बतलाए है वह यहाँ भी जान लेनी चाहिए। यानी 16 तो कषायों के समय लेना, यहाँ 15 किए थे तो 16 उसको लेना और फिर बाद में उसको संकलेश से ले लेना। कहाँ पर? ऊपर का पहले विशेषार्थ के ऊपर, विशेषार्थ के ऊपर। हाँ, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय, जैसे हमने त्रस में देखा था। देखो, निकालो, त्रस और त्रस पर्याप्त की बात आई थी ना, 27 पृष्ठ पर पहली पैराग्राफ में अंतिम ऊपर से 4th लाइन। किंतु इतनी विशेषता है कि त्रस और त्रस पर्याप्तकों में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विविधता जघन्य एक समय है, और उसका उन्होंने विशेषार्थ में खुलासा किया है, विशेषार्थ की 3री लाइन। क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना में एक समय शेष रह गया है, उसके त्रस और त्रस पर्याप्तकों में उत्पन्न होने पर वहाँ सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति का जघन्य काल एक समय देखा जाता है। वहाँ उत्पन्न हुआ है तब उसकी एक समय स्थिति थी, बाद में वो उद्वेलना पूरी हो गई तो नहीं रही, उसको भी अल्पतर कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो जो कितनी आयु शेष रही, 17 समय आयु बाकी थी, 17 समय प्लस आवली बाकी थी। आवली को अभी आपने चार समय अभी तो आवली की आवली क्योंकि वो बड़ी है ना, तो एक आवली और 17 समय, तो पहले 17 समय में यानी 16 समय में बांधे उसने, और 17 समय वाला जो है वो अध्यक्ष से जो कुछ है उससे बांधा, यानी कंटिन्यूस अधिक बांधे। एक आवली काल बीत जाने पर वो कंटिन्यूस वो बढ़े, पहले बांधा था ना उसने, तो आवली के पश्चात वो संक्रमित हुए, तो 17 समय यहीं पर घटित हुए, बाद में मर गया वो, अन्य भव में गया, तो वहां तो बंध की अपेक्षा वो अध्यक्ष है संक्लेश है उसको वहां पर लिया। हाँ, विग्रह वाला अध्यक्ष है और संक्लेश है। यहाँ 28 पृष्ठ पर आए हम, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। पहली पृथ्वी में इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है, यहाँ सभी प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। अन्यत्र हमने कितने किए थे? पहली पृथ्वी में 3 समय वाला लिया था, अब यहाँ दूसरी पृथ्वी से लेकर 2 ही समय होगा। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। कुछ कम कहा, क्योंकि यहाँ आया है, उत्पन्न हुआ है, समय तो प्राप्त किया और फिर अंत में जाके उसकी अल्पतर होती चली जाएगी। देखो, 3 समय ऐसे नारकी में घटित कर रहा है, तो पहले भव का कुछ नहीं ले सकते। हा? तो नारकी में पहले, और जब हम अल्पतर कहते हैं या भुजगार कहते हैं तो कंपेयर करने के लिए कोई भी बेसिक चाहिए, तो नरक में आने पर पहले समय में जितनी थी, तो पहले 2 विग्रह वाला लिया है, तो पहले विग्रह में जो कुछ उसने वहां असंगी में से आया है, कम स्थिति लेकर आया है, और असंगी योग्य ही वहां बंद होगा। दूसरे समय में, अब ये तो अपना बेसिक पॉइंट है, अभी दूसरे समय में उसने यहाँ बढ़कर बांधा, असंगी के योग्य ही बढ़कर बांधा, क्योंकि उसका अध्यक्षय हुआ था, तो भुजगार का एक समय हुआ, फिर उसने मिश्र अवस्था प्राप्त की, फिर बढ़कर बांधा, भुजगार का दूसरा समय हुआ, फिर संक्लेशय हुआ, उससे बढ़कर बांधा, तो भुजगार का तीसरा समय हुआ, यानी नारकी में उत्पन्न होने का चौथा समय है, क्योंकि भुजगार अवस्थित कहते तो उसके कंपैरिजन के लिए एक समय पहला चाहिए अपने। हाँ, पहली पृथ्वी में कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण, ठीक है। हाँ, इन्हें वहां जाने पर सम्यक तो प्राप्त करने की अपेक्षा, और जो क्षाई का आया है उसकी अपेक्षा लेनी है, तो मिथ्यात्व का नहीं मगर 12 कषायों का, पूरे कुछ कम क्यों कहा अपनी स्थिति प्रमाण, उसको उत्कृष्ट आयु बांधता नहीं है, उत्कृष्ट आयु नहीं ना, उसकी आयु कम है इसलिए। या तो उत्कृष्ट किसके लेना, जो यहाँ पर आया है और उसने वेदक समय तो प्राप्त किया है, आयु के अंत में उसकी जघन्य स्थिति होगी, इसलिए उसको भी कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहा। कम होता है तो उसको नहीं लेना, वेदक समय दृष्टि को लेना।
अवस्थित स्थिति विभक्ति का कहा लोग के समान है, यानी जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त अवस्थित के लिए 12 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 17 समय है, जैसे सामान्य नारकियों में घटित किया था, तथा शेष अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्तियों का भंग मिथ्यात्व के समान है। अल्पतर ने अपनी उत्कृष्ट आयु से कुछ कम और अवस्थित में भी एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक। अनंत अनुबंधी चतुष्क का कथन इसी प्रकार जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है, अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है, यानी एक समय है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, तथा शेष स्थिति विभक्तियों का काल ओघ के समान है। ये आसान है ना समझने? सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर में उसको उद्वेलना वाला ले सकते, यहाँ आया है नारकी में और एक समय में उद्वेलना हो गई। विशेषार्थ, सामान्य से नारकियों के सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का उत्कृष्ट काल यद्यपि कुछ कम 33 सागर बतलाए हैं, पर प्रथमादि नरकों में वह कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि जिस नरक की जितनी उत्कृष्ट स्थिति होगी उससे कुछ कम काल तक ही उस नरक का नारकी अल्पतर स्थिति के साथ रह सकता है, तथा सामान्य से नारकियों के मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति का जो उत्कृष्ट काल 3 समय या 2 समय बतलाया है, वह पहले नरक में तो अविकल बन जाता है, क्योंकि वहां असंगी उत्पन्न होते हैं, किंतु द्वितीयादि नरकों में असंगी जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता है, अतः वहां 3 समय वाला विकल्प नहीं बनता। शेष कथन सुगम है। ये तो नारकियों की बात हो गई, अब तीर्यंचों में देखेंगे। जब तीर्यंच इन जनरल कहेंगे तो उसमें एकेंद्रीय और 2 पर्याय भी हो सकते हैं ना। मिथ्यात्व तीर्यंचों में मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है। ओघ के समान है का अर्थ है 4 समय, और ये 2 भव की अपेक्षा होते हैं। अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल साधिक 3 पल्य है। मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति विभक्ति का ने अल्पतर का जघन्य काल 1 समय, साधिक ने उसने पहले मिथ्यात्व का जघन्य बंद किया था। हाँ, 3 पल्ले वाला भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि है तो भी उसका जघन्य होता जाता। हाँ, आगे के भाव में उसने जघन्य एक अंतर्मूर्त तक हो सकता है ना, उसका एक अंतर्मूर्त तक अल्पतर हो सकता है, तो वहां जाने के एक अंतर्मूर्त पहले उसने अल्पतर किया था और फिर वहां उत्पन्न हुआ, क्योंकि मिथ्यात्व की बात लेनी है, नहीं तो वो समय दृष्टि नहीं ले सकते। या तो वहां पर उत्पन्न होगा तो जाके उसके अल्पतर कम हो जाएगा, कुछ कम 3 पल्ले होगा, और सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न कराना है तो क्षायिक होगा, वहां मिथ्यात्व रहेगा नहीं। समझ में आई बात? वहां पर जाने के बाद सम्यक तो उत्पन्न कराते हैं तो साधिक 3 पल्ले नहीं होगा, नहीं वहां भी समझो 3 पल्ले वाले को कम ही होता रहता है, तो वहां सम्यक तो उत्पन्न करने में तो कुछ विशेषता तो हुई नहीं है उसके, तो यहां जाने से पहले ही उसने अल्पतर किया था अंतर्मूर्त, फिर वहां उत्पन्न हुआ तो साधिक हो गया। हमें अधिक से अधिक कितना हो सकता है उसको लेना है। तथा अवस्थित स्थिति विभक्ति का काल ओघ के समान है, यानी जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। 12 कषाय और 9 कषाय और अनंतानुबंधी चतुष्क की
अल्पतर स्थिति विभक्ति का भंग मिथ्यात्व के समान है, यानी वो साधिक तीन पल्य। हाँ, देखो देखो, अल्पतर बात करनी है, मिथ्यात्व का अल्पतर लेना है, तो ओग में मिथ्यात्व का अल्पतर कितने काल तक होता है? हाँ, 163 में देखा था, क्योंकि बीच में हमने वो पल्लोपम को तीन पल्ले वाली भी आयु ली थी और 31 सागर की भी ली थी, और फिर 162 उसमें लिए। हाँ, 163 साधिक में पल्ले लिया था। हाँ, वैसे यहाँ पर भी उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्ले लिया है, मिथ्यात्व की अल्पतर वाला। तो जाने के पहले उसने अल्पतर किया था, ऐसा ले सकते हैं, मिथ्यात्व को लेना ना। हाँ, अंतर्मूर्त तक उसने अल्पतर किया था, क्योंकि तिर्यंच को रखते हुए ये बात है। वो तो हमने 163 वगैरह लिया था, तो देवों के मनुष्यों के भव लिए थे, वैसा नहीं चलेगा, यहाँ तिर्यंच को ही रखना है। बारह कषाय, नौ कषाय और अनंतानुबंधी चतुष्क की अल्पतर स्थिति विभक्ति का भंग मिथ्यात्व के समान है, क्योंकि ये सभी घटेंगे ना। तथा शेष स्थिति विभक्तियों का काल ओग के समान है। ये फुल स्टॉप देना है यहाँ पर। शेष यानी अनंतानुबंधी के बारे में अवक्तव्य भी लेना, क्योंकि विसंयोजना यहाँ पर भी होती है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य हैं। अब सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर होती होनी चाहिए, तो कुछ उद्वेलना में एक समय होगा, यहाँ पर आकर उसने उद्वेलना कर दी, या अन्य में से तो तिर्यंच में आया है, अन्य गति में से तिर्यंच में आया है और उद्वेलना कंप्लीट कर दी। अब कुछ कम तीन पल्ले कैसे लेना है? हाँ, भोगभूमि में जाने के बाद समय तो प्राप्त किया है, क्योंकि उद्वेलना की बात नहीं ले सकते, वो तो पल्ले के असंख्यात विभाग में ही पूर्ण होती है, तो उसकी तो बात नहीं ले सकते हैं। तथा शेष विभक्ति विभक्तियों का काल ओघ के समान है। विशेषार्थ, तिर्यंचों में मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय बन जाता है, इसलिए इसे ओघ के समान कहा, क्योंकि दो भव हो सकते हैं तिर्यंचों में, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय में लेना। तथा अल्पतर स्थिति का जो साधिक तीन पल्य कहा है, अभी देखा है ना, मैं ऊपर से बताया था, उसका कारण यह है कि भोग भूमि में जो तिर्यंचों के मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति ही होती है, इसलिए अल्पतर स्थिति के तीन पल्ले तो ये हुए, तथा इसमें पूर्व पर्याय का अंतर्मूर्त और सम्मिलित कर देना चाहिए। देखो बराबर आया अपना, मैंने तो देखा नहीं था, यानी अंतर्मूर्त तक पहले पर्याय में उसने घटाया, यानी कम स्थिति बांधी थी, तो उसका अल्पतर होता गया था और फिर यहाँ उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार अल्पतर स्थिति का साधिक तीन पल्ले प्राप्त हो जाता है। तथा यहाँ सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति का जो उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्ले कहा है, सो यह जिसने उत्तम भूभूमि के तिर्यंच में उत्पन्न होकर अतिशीघ्र वेदक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है और अंत तक वेदक सम्यक्त के साथ रहा,
उसकी अपेक्षा कहाँ है, क्योंकि इसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति उत्तरोत्तर अल्प अल्प होती जाती है, शेष कथन सुगम है। पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंश योनिमति जीव में क्या अभी चार समय घटित हो गए? मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व की अपेक्षा 3 समय और शेष की अपेक्षा 18 समय है, 17 के बदले 18 लिए, तथा तिर्यंश की बात चल रही ना, और पंचेंद्रिय तिर्यंश है, पंचेंद्रिय में संगी असंगी दोनों हो गए हैं, तो उस अपेक्षा से ले सकते हैं यहाँ पर, तथा शेष कथन सामान्य तिर्यंशों के समान है, किंतु इतनी विशेषता है पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त को में स्त्रीवेद की भुजगार स्थिति भक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 17 समय है, तथा योनिमति तिर्यंचों में पुरुष वेद और नपुसक वेद की भुजगार स्थिति भक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 17 समय है। पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्तकों में स्त्री वेद वाले को छोड़ा और योनिमति में स्त्री वेद वाले को रखा और अन्य दो वेद की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 17 समय बताया। विशेषार्थ, जिस प्रकार नारकियों में मिथ्यात्व की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 3 समय घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार यहाँ उक्त 3 प्रकार से तिर्यंचों के भी घटित कर लेना चाहिए, तथा उक्त 3 प्रकार के तिर्यंचों में 3 प्रकार ने पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त और योनिमति 16 कषाय और 9 कषायों की भुजगार स्थिति का उत्कृष्ट काल 18 समय प्राप्त होता है, जिसका खुलासा इस प्रकार है। उक्त 3 प्रकार के तिर्यंश असंगी भी होते और संगी भी, ये महत्व की बात। जब ऐसा असंगी जीव लो अब ऐसा असंगी जीव लो जिसकी आयु में 1 आवली और 16 समय शेष रहे, तब उसने विवक्षित कषाय को छोड़कर शेष 15 कषायों की उत्तरोत्तर भुजगार स्थिति का 15 समय में बंद किया, पश्चात 1 आवली के बाद जब आयु में 16 समय शेष रहे तब उसने उन भुजगार स्थितियों का 15 समय के द्वारा विवक्षित कषाय में संक्रमण किया, अनंतर 16वें समय में उसने अध्याक्षय से भुजगार स्थिति को बांधा, यानी उसी प्रकृति को बांधा, जैसे क्रोध की बात करते तो क्रोध को बांधा, पहले तो 15 तो अन्य को लिया था, अब उसी अनंतानुबंधी की क्रोध को अधिक बांधा, और 17 समय में रुजुगति से संगियों में उत्पन्न होकर संगियों के योग्य स्थिति का बंध किया। अब वो विग्रह वाले से नहीं आया है, रुजुगति से आया है, तो डायरेक्ट भुजगार होगा उसका। पश्चात 18वें समय में संक्लेश से भुजगार स्थिति को बांधा, इस प्रकार यहाँ भुजगार स्थिति के कुल 18 समय प्राप्त होते हैं। किंतु तिर्यंश पंचेंद्रिय पर्याप्त के स्त्रीवेद की और योनिमति तिर्यंश के पुरुषवेद और नपुसक वेद की भुजगार स्थिति के 17 समय ही प्राप्त होते हैं, जिसका उल्लेख मूल में किया ही है। बात यह कि जो जिस वेद के साथ उत्पन्न होता है उसके पूर्व पर्याय के अंतिम अंतर्मुहूर्त में वह वेद ही बांधता है, यानी वही वेद बांधता है, सच्चाई वह ही वेद बांधता है, यानी वही वेद बांधता है। जहाँ हाँ अतः योनिमति तिरंच में उत्पन्न होने वाले जीव के पूर्व पर्याय के अंत में पुरुष व नपुंसक वेद का बंधन नहीं होने से, ये योनिमति पर पहले घटित कर रहे हैं। योनिमति तिरंच में उत्पन्न होने वाला है ना, तो पूर्व पर्याय के अंत में भी वो स्त्री वेद को बांध रहा है, तो पुरुष और नपुंसक वेद का बंधन नहीं हो रहा था, तो 16 कषायों का उक्त वेदों में संक्रमण भी नहीं होता है। अतः उक्त वेदों के भुजगार के 18 समय घटित नहीं होते। इसी प्रकार पर्याप्त तिर्यंच के स्त्री वेद के भुजगार का काल 18 समय न रहकर 17 समय कहा है। ये पूर्व भाव में जो 17 समय वही है, यहाँ पर आने पर नहीं होगा। तो यह 17 समय स्वस्थान की अपेक्षा जानने चाहिए। अब यहीं रुकते हैं, नया विषय कल शुरू करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो।